जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोही निरात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहते, बाबा संग आत्मा खिल जाते। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा के याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे।
उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी, हर धड़कन को तलाश तेरी। तेरा मिलता नहीं है पता, खाली आंखें खुद से सवाल करे, अमनों की चीख बेहाल करे, बहता लहू फरियाद करे। तेरा मिटता चला है निशा, रूह जम सी गई, वक्त थम सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा, जहां चल दिया नूरे खुदा, नूरे खुदा, तू कहां छिपा है हमें ये बता, नूरे खुदा, नूरे खुदा, यूं ना हमसे नजरे फिरा, नूरे खुदा, नूरे खित खुदा, आजकल तू कहां है ये बता। भगवान के साथ चलते चलते यदि आत्मा उससे दूर हो जाए, किसी विकार में उलझ जाए, किसी पाप में खो जाए, किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन जाए, या किसी अपने दुख में, अपने संस्कार में खो जाए, तो बाबा से दूर हो जाती है। ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी एक दूरी, और भीतर एक प्यास और एक आस फिर से मिलन की रह जाती है। तेरा मिलता नहीं है पता, आजकल तू कहाँ है ये बता, यूं ना हमसे नजरे फिरा। कई आत्माएं ऐसी अवस्था से वर्तमान में गुजर रही है, भीतर अशांति है, अमनों की चीख बेहाल करे, खाली आंखें खुद से सवाल करे, खालीपन खतरनाक है। अभी अभी मुरली सुनी होली की, क्या कहा बाबा ने, यदि वासनाओं को निकाल दिया, विकारों को निकाल दिया, यदि अंधकार को निकाल दिया और प्रकाश को न भरा तो दमन होगा। पवित्र तो सन्यासी भी रहते हैं, पर तुम्हारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में भेद है, उनका दमन है। तुम इच्छाओं की जड़ों को ही जला देते हो, अशुद्धियों को जलाना ही होली मनाना है। तुम मारते नहीं हो, मृत्यु के बाद तो पुनर्जन्म है, पर जो जल जाता है वहां राख है। आसनों की राख पर खिला हुआ अमल यदि इच्छाएं शेष रह जाए तो पुनर्जन्म होगा, विस्फोट होगा। होली अर्थात रंग नहीं, जीवन का ढंग। हर पल हर श्वास उमंग हो, उत्साह हो, तभी जीवन उत्सव बनेगा। श्वासोश्वास जीवन उमंग से भरा हो, स्फूर्ति से भरा हो, और जहां उदासी आ गई और जहां बाबा से दूर हो गई वहां उलझन होगी, कंफ्यूजन होगा, अपने ही करियर के कंफ्यूजन में खोए हुए, अपने ही संस्कारों के इंद्रजाल में खोए हुए, धीरे धीरे बाबा से दूर 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 इतना दूर हो जाते हैं कि उनके लिए बाबा केवल सामने हैं, भीतर नहीं। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे आज बाबा ने बताए हैं। पहले वो जो समान है, दूसरे वो जिनके लिए बाबा सामने है, उनके पास संकल्प है, वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी पूरे बने नहीं है, और तीसरे की तो बात ही मत पूछो। तीसरे बहुरूपी है, विचित्र लीला करते हैं, अभी अभी बाबा के पास है और अभी अभी बाबा से दूर है, अभी अभी बाबा से कहते तुम ही सब कुछ हो और अगले ही पल सब कुछ भूल गए, मांगने लगते हैं। एक पल भिखारी है, एक पल राजा है। हम किस कैटेगरी में? अमृत वेला मिलन किस तरह हो रहा है? फरियाद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, केवल शांति नहीं। अभी अभी मुरली में सुना होली की स्मृति, अर्थात केवल शांत स्वरूप हो जाना नहीं, शांति आ गई तो नींद आ जाएगी, यहां तो जीवन में आनंद भर जाए, जीवन नृत्य बन जाए, प्रतिपल एक सजगता, एक आनंद की स्थिति, भीतर कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि जीवन प्यूरिटी में चल रहा है। जहां अपवित्रता है वहीं दुख है, संताप है, पश्चाताप है, पीड़ा है, बेचैनी है। वासनाओं को और अशुद्धियों को जला देना, यही होली है और हर दिन होली है। तो ये तीन प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए। एक प्रश्न है सबसे, एक टोकरी है जिसमें 20 आम रखे, एक टोकरी है और जिसमें 20 आम रखे हैं और 20 बच्चे हैं। हर एक बच्चे को एक एक आम मिलना चाहिए और टोकरी में एक आम बचना चाहिए, कैसे? एक टोकरी, 20 आम, 20 बच्चे, हर एक बच्चे को एक एक आम मिलना चाहिए और टोकरी में एक आम बचना चाहिए, आधा आम नहीं, फुल आम। उत्तर सही है, 19 बच्चों को 19 आम दिए जाए और 20वें बच्चे को टोकरी सहित आम दिया जाए। जो 20वां बच्चा है वो फर्स्ट कैटेगरी है, उसके पास टोकरी भी है और आम भी है। जो बाकी बच्चे हैं उनके पास आम है, टोकरी नहीं, टोकरी सामने है, वो टोकरी पाना चाहते हैं, स्रोत से जुड़ना चाहते हैं पर जुड़ नहीं रहे हैं, बाप सामने है, समान होने का संकल्प उनके पास है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो बच्चे हैं जिनको आम तो मिला है पर और आम चाहिए और टोकरी कहाँ है उसकी कोई खबर नहीं और टोकरी से कनेक्शन ही टूट गया है, पर आम की बहुत लालसा है कि एक आम से नहीं होगा, वो मांगते ही रहते, अभी अभी बच्चा, अभी अभी मांगने वाले, ऐसी विचित्र लीला करने वाले बच्चे, ये थर्ड कैटेगरी है जिनके तो बात ही मत पूछो। तो हम कौन है, टोकरी विद आम या केवल टोकरी, या फिर जो मिला है उससे तृप्ति है ही नहीं, और चाहिए और चाहिए, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, और जिससे मांग रहे हैं उससे कनेक्शन भी टूटा हुआ है और उन्हें भी पता है हमारा कनेक्शन टूटा है, पता तो सबको चलता है। उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी, हर धड़कन को तलाश तेरी, तेरा मिलता नहीं है पता, खाली आंखें खुद से सवाल करे, अमनों की चीख बेहाल करे, बहता लहू फरियाद करे, तेरा मिटता चला है निशा, याद है ही नहीं, इतने उलझ गए हैं संसार में, इतने उलझ गए हैं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया है वही भूल गया है। कल एक बहन का फोन आया था, सब कुछ कर रहे हैं पर बाबा से दूर हो गई। सुबह से लेकर रात तक सेवाएं, कोर्स, सब कुछ, फिर भी बाबा से दूर। अमृत वेला है, मुरली है, सब है, फिर भी जीरो कनेक्शन। बहता लहू फरियाद करे, तेरा मिटता चला है निशा, रूह जम सी गई है, वक्त थम सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजिल पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा तो पहले बच्चे वो है जिनके पास नूरे खुदा है, आम भी है। तू कहां छिपा है हमें ये बता, ये तीसरे बच्चे है, उन्हें पता ही नहीं वो कहां चला गया, कहां खो गया। कहीं ना कहीं स्वयं को उलझाया है किसी बुरी आदत में, किसी संस्कार में, किसी संबंध में, किसी व्यक्ति में, किसी देह में, किसी इच्छा में, किसी महत्वाकांक्षा में, पैसों में, मनी माइंडेडनेस में। हर चीज में पैसा 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 ही दिखाई देता है, बस पूरा जीवन पैसों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, प्राइस टैक्स। उससे बुद्धि अभी निकली ही नहीं, भूल गए हैं कि लक्ष्मी चंचल है, आज इधर कल उधर, और पैसों के आधार पर जो सबके प्यारे हो रहे हैं। जब तक लक्ष्मीकांत है तब तक ये प्यारे लाल है जेब में, जब तक लक्ष्मीकांत है ये भूल गए। जीवन के लक्ष्य से ही भटक गए। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो ज्ञान में नहीं है, हम उनकी बात कर रहे जो ज्ञान में है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दूसरों को सुबह से रात तक जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्लास कराते हैं, भट्टिया कराते हैं, और जो तीव्र पुरुषार्थी है। हो सकता है उनमें से कुछ 2 से 5 योगी है, उनकी बातें चल रही है। इसलिए ये ना समझना ये संसार के लोगों की बात चल रही है, ये यहां वालों की बात चल रही है। हो सकता है इस सभा में हो और वो मैं ही हूं। लक्ष्य क्या था और कहां उलझ गए, नाम में, पद में, पोजीशन में, सम्मान की कामना में। वो कौन सी वस्तु है जो दूसरों को देने के बाद ही मिलती है? सम्मान, खुशी, प्यार। तू कहां छिपा है हमें ये बता, वेयर आर यू। तो आज के बाबा के महावाक्य, आज का 54th दिन, 108 दिन की इस भट्टी का, उठते ही समान भाव का वरदान लो। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा। कितनी अच्छी लाइन है, संसार बाबा ये तो सुना था, संकल्प बाबा ये नया है ना। तो आज का पहला होमवर्क है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेते समय मैं बाबा का, श्वास छोड़ते समय बाबा मेरा। आंखें बंद, मैं बाबा का, श्वास लो, श्वास छोड़ो, बाबा मेरा। और कुछ देर अगर अंदर भीतर रोक के रखो तो बाबा को ऊपर नीचे घुमाओ अंदर, फिर से एक बार बहुत धीरे करना है बिना आवाज के, धीरे धीरे श्वास लेना है 10 सेकंड तक, अंदर रोक के रखना है 10 सेकंड, छोड़ना है 10 सेकंड, और उसके साथ में संकल्प जोड़ेंगे, मैं बाबा का और छोड़ते समय बाबा मेरा। स्टार्ट। एक और टेक्निक है वायदे की। अभी होली की जो मुरली सुनी उसमें भी सुना, वायदा केवल वचन नहीं है, वायदा अग्नि हो जो जड़ को भस्म कर दे। प्रतिज्ञा क्या हो? आग हो, आग। केवल वचन नहीं, केवल शब्द नहीं, धधकती अंगार हो जो उस जड़ को ही भस्म कर दे। तो जब हम भीतर श्वास रोक के रखते हैं तो एक समय आता है कि हम रोक नहीं पाते और मन कहता है अब उसको बाहर छोड़ो, पर छोड़ना नहीं। उसी अवस्था में, उस संकल्प में स्थित हो जाना जो बुरी आदत हमें छोड़नी है वो। तो विधि क्या है? प्रतिज्ञा की विधि। कोई एक प्रतिज्ञा, जैसे कोई एक बुरी आदत है उसको छोड़ना है। श्वास लो, उस संकल्प को दोहराते जाओ, श्वास रोक के रखो कुंभक, और उस संकल्प को दोहराते जाओ दोहराते जाओ, तब तक दोहराओ कि अब बस अब नहीं रोक सकते, और फिर भी उस बेचैनी की अवस्था में उस संकल्प को दोहराओ, और फिर जब एकदम ही प्राण ही निकलने हो तब छोड़ दो उसे। ये दोनों अवस्थाओं में की जा सकती है, एक तो श्वास भर के रखो या श्वास बाहर, दोनों जो प्राणायाम में सिखाते हैं। किसी भी अवस्था तो उसको क्या करना है, इस संकल्प के साथ जोड़ देना है। जैसे उससे भी पावरफुल है श्वास बाहर छोड़ देना पूरा, और फिर रोक के रखना, और उस समय संकल्प करना, और रिपीट करते रहना, 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 जब तड़फड़ाने लगे। तब उसको छोड़ना। तो वो संकल्प सिंपल संकल्प नहीं रहता है, क्योंकि उस संकल्प के साथ मन की बेचैनी जुड़ी हुई है, एक हलचल जुड़ी हुई है, और वो संकल्प क्रांति का रूप धारण कर लेगा फिर। तो कुछ भी चीज अगर हम छोड़ते हैं तो रिप्लेसमेंट कुछ चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट नहीं दी जाए तो क्या होगा? खालीपन खाएगा। खाली विकारों को हटा दिया पर कुछ भरा नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ और आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगी। इसके लिए खालीपन बहुत बहुत खतरनाक है। विकारों को छोड़ दिया पर परमात्मा प्रेम से नहीं भरा, मर्यादाओं से नहीं भरा, अमृत वेले से नहीं भरा, मुरली ज्ञान चिंतन मनन से नहीं भरा, तो भोग विलास में बुद्धि जाएगी, व्यर्थ में बुद्धि जाएगी, पॉलिटिक्स में बुद्धि जाएगी, भटकेगी कहीं ना कहीं, तो जरूर अटकेंगे 100%। ऊपर से सब कुछ चालू रहेगा, ब्राह्मणों की दिनचर्या, अंदर असुरों की दिनचर्या। छोड़ने के लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, शक्तिशाली संकल्प। कल एक कुमार आया था अपने पिताजी को लेके, उनकी उम्र है 75, 5 साल से स्मोकिंग छोड़ा है। कितने साल से कर रहे हैं? जब छोटे थे तब से। गांव के दादा है, 60 साल से तो ज्यादा ही होगा, बचपन से ही चालू कर दिया था बीड़ी पीना, पर जैसे ही बाबा मिला, रिप्लेसमेंट मिल गया ना कुछ। अगर ये नहीं मिलता तो नहीं होता वो, कुछ तो रिप्लेसमेंट चाहिए, नहीं तो खालीपन। जो लोग छोड़ते हैं कितना देर छोड़ते हैं, 1 महीना 2 महीना, फिर कोई इमोशनल डिस्टरबेंस हो गया तो उसकी तरफ दौड़ के भागते हैं, क्योंकि उससे सुख मिलता है। उसका आकर्षण नहीं है, पर पुरानी स्मृति है सुख की। उसके नुकसान का पूरा अध्ययन किया, 1 मास तक दिन रात अध्ययन किया और दूसरों को लेक्चर सुनाया, पर खुद के जीवन में जब इमोशनल डिस्टरबेंस आया तो इमोशनल रिलीफ चाहिए। अब वो रिलीफ केवल उस बीड़ी में, उस सिगरेट में, उस दारू में, उस तंबाकू में, उस चरस में, उस गांजे में प्राप्त होती है, या फिर काम विकार में, या फिर किसी व्यक्ति में। इसलिए क्या कहा, होली अर्थात मृत्यु नहीं जलाना। मृत्यु मरने वाला तो फिर जन्म लेगा, इसके लिए क्या करो, जला दो। भीतर वैराग होगा तो बाहर सन्यास के फूल खिलेंगे। तो आज 3 सूत्र है, ये हो गया क्या पढ़ के? नहीं ना, आधा ही हो गया। तो जिनका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा, तो पहला होमवर्क ये बता दिया, ऐसे बाप के बच्चे ही मुलाकात की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात 7 का अनुभव करते, 7 भी इतना जैसे कि 2 नहीं 1, 2 नहीं रहे, क्या हो गए, 1 एकत्व। द्वैत हट गया, अद्वैत का जन्म अर्थात योग। 7 भी इतना जैसे 2 नहीं 1, माई फादर एंड आई आर 1। सेकेंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन का समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो 3 बच्चे हैं, 1st नंबर समान बनकर मिलने वाले, 2nd नंबर समान बनने के संकल्प से मिलने वाले, उनका इच्छा है कि हमें भी मिलना है, हमें भी बनना है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन द मेकिंग। और 3rd नंबर की तो बात ही मत पूछो भगवान भी कहता है अभी इनका क्या करूं मैं। 3rd नंबर वालों की लीला बड़ी विचित्र है, लीला पुरुषोत्तम। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे, अभी अभी कहेंगे बाबा तुम सब कुछ हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, ये हूं वो हूं, तुम्हारा सब कुछ है। जैसे हमारे कुछ कुछ पेशेंट होते हैं, इतने विचित्र होते हैं, समझ ही नहीं आता इनको चाहिए क्या। आते हैं तो एकदम दुखी है, आप ही कर दो सब कुछ, आप ही सब कुछ हो। और जब उनको इलाज लिख के देते हैं तो उसमें दोष निकालते हैं, और फिर दूसरे दिन आते हैं तो ये दवाई ने काम नहीं किया, कुछ भी फालतू है सब, ठीक से दवा नहीं देते हो। और फिर अगले मोमेंट आते हैं, रोने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाए, आपने आप ही गुस्सा करोगे तो फिर हमारा क्या होगा, आप ही चिल्लाओगे, पहले से हम दुखी है, घर में इतनी परेशानी है, उसमें सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, और आप चिल्लाते हो। और फिर अगले ही पल अब जो भी आप ही करो, और कहीं नहीं जाना है, आपसे दवा करनी है। अरे प्यार भी करते और खरोचते भी है अजीब वो गरीब है। और फिर दूसरे के पास भी जाएंगे, दूसरे डॉक्टरों के पास भी जाएंगे, वहां पर भी ऐसा ही कहेंगे, और फिर वापस आएंगे, कहते 3-4 जगह दिखा दिया, कुछ नहीं हुआ, अब आप देखो क्या करना है, अब जो भी हो गया पुराना सब छोड़ो। और फिर दवा लिखने के बाद वापस उसमें दोष निकालते, वापस गूगल पे जाके सब सर्च करते, कहते ये बहुत हेवी डोज दे दिया आपने, दवा ठीक नहीं है आपकी, ज्यादा डोज देते हो। चारों तरफ से कुछ भी करो, समझाओ कि थोड़ा योग करो, मेडिटेशन करो, आपको पता नहीं हमारी कितनी उलझन है, आपको होता ना समझ में आता, थोड़ा काउंसलिंग करा लो। काउंसिल तो हम खुद हैं, हम किसके काउंसलिंग ले, कैसे ठीक करें। तो तीसरे नंबर वाले बच्चे बड़े विचित्र है, अभी अभी बच्चा बन के मिलेंगे, अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे, बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं, कितनी वैरायटी है, अलग 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 अलग, कभी कुछ कभी कुछ। और एक चौथे भी है जो इसमें दिए नहीं है, जिसमें ये चार तीनों रूप समाए हुए, कभी समान बन के भी मिलते हैं, कभी दूर भी हो जाते हैं, कभी बाबा सामने है, और कभी तो कौन बाबा, कैसा बाबा, कौन कैसा, कुछ पता नहीं, ऑलराउंडर। तो आज का दूसरा होमवर्क है, ये लाइन 21 बार लिखनी है, मेरा संकल्प भी बाबा, मेरा संसार भी बाबा। कितनी बार लिखेंगे इसको, 21 बार लिखेंगे, मेरा संकल्प भी बाबा, मेरा संसार भी बाबा। यहां अभी लिखना मत चालू करो, रुको जरा, ये क्लास वर्क नहीं है, होमवर्क है, यही पूरा कर दिया ताकि दिन में फ्री। और तीसरा काम है, एक चित्र बनाना है, ये दूसरे नंबर के बच्चे हैं जो बाबा की तरफ चल रहे हैं, अपना एक चित्र, और बाबा सामने है उज्जवल रूप में, प्रकाश रूप में, और मैं उसकी तरफ चल रहा हूं। तो ये आज के तीन सूत्र, तीन प्रकार के बच्चे, तीन सूत्र, और वो वाली होली की मुरली, जिसमें क्या क्या सुना, होली अर्थात क्या, पवित्र, होली अर्थात जलाना, होली अर्थात दृढ़ संकल्प, होली अर्थात केवल स्मृति नहीं, केवल शांति नहीं, होली अर्थात खालीपन नहीं, खालीपन खतरनाक है, और प्रतिपल उमंग, उत्साह, जीवन नृत्य, श्वासोश्वास आनंद ही आनंद, और पवित्रता, संपूर्ण प्यूरिटी, जहां प्यूरिटी है वहां सब कुछ है, सारी शक्तियां है। बार बार याद दिलाना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परम धाम से शक्तियों की अनंत किरणें मुझ पर आ रही है निरंतर। कितना सुंदर संकल्प है, उससे ही मुझे सब कुछ मिल रहा है, शिव बाबा से ही सब कुछ मिल रहा है, ओशन ऑफ विटामिन्स, ओशन ऑफ मिनरल्स, ओशन ऑफ प्रोटीन्स, सब कुछ, सारी खुराक, सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां, सब कुछ, सारी पवित्रता, सब कुछ। तो आज के ये तीन कार्य है, सबसे पहला कार्य श्वास लेना छोड़ना, बीच बीच में करते रहो, श्वास लेना, और जोर से नहीं करो कि दूसरों को पता चले, इतना धीमा करो कि कानों कान खबर ना चले किसी को। दूसरा वननेस अफर्मेशन, मेरा संकल्प भी बाबा, मेरा संसार भी बाबा, और तीसरा है एक ड्राइंग जिसमें हम चल रहे हैं, बाबा सूरज है सामने। अभी प्रश्न आज नहीं लेंगे, होमवर्क दे रहे, आज कविता किसकी है, कविता बहन की कविता, तो अभी टॉपिक दे रहे हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद डॉक्टर आनंद आज हमारे बीच में है, मैडम भी आए। डॉक्टर आनंद नेफ्रोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बाबा के ज्ञान में चलते हैं और यहाँ बार बार आते रहते हैं, उनके युगल बैठे हैं। एक अचानक से तूफान आया और उस तूफान का कैसे सामना किया वो शॉर्ट में बताएंगे, पहले कविता उसके बाद। तो आगे की कविताएं दे रहे हैं कल की, सुशील भाई के लिए, कल भी दिया है किसी को, अच्छा दी हुई कि, हाँ कितने लोगों को दिया है, दो, और दो लोगों को दे रहे हैं, एक सुशील भाई और एक विठल भाई को। सुशील भाई आ गए हैं सभा में, कल ही आ गए हैं लंबी यात्रा कर सेवाओं की, हाँ क्लास में सक्रिय भी है और बाहर आ गई है वापस, तो थोड़ा उनको कठिन वाला देना पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं चलेगा, थोड़ा टफ होना चाहिए। तो आपकी कविता का टॉपिक है निर्लेप नीरवता, नीरवता, निर्लेप नीरवता। और विट्ठल भाई रूपहीन रमन, रूपहीन रमन। अभी हम कविता सुनेंगे, कौन सी कविता का टॉपिक क्या है? मंच की मोहकता। चार टॉपिक हो गए ना चार दिनों के, और अगला टॉपिक माता जी के लिए नहीं, नया देंगे। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन।
ओम शांति। आज का टॉपिक है मंच की मोहकता। दुनिया के इस रंगमंच पर हम सब हैं कलाकार, पार्ट बजाते अपना अपना निभा रहे किरदार। नहीं मंच से मोह मुझे, यह तो बाबा की सेवा है। मेरा मंच तो परम धाम है, सुख शांति की मेबा है। देह भान से न्यारा होकर जाना है बेहद के पार। इस दुनिया के इस रंग मंच पर हम सब हैं कलाकार। मंच की मोहकता को छोड़, सुनहरी जंजीरों को तोड़। मान सान की नहीं है इच्छा, नहीं तालियां बजवाने की होड़। शांति धाम में जाना मुझको, जहां मिलता है सुख अपार। दुनिया के इस रंगमंच पर हम सब हैं कलाकार। ये मंच बड़ा सुहाना है, इससे मोह छुड़ाना है। ज्ञान गुणों के मोतियों से आत्मा को सजाना है। मोह जीत बनने का प्रण है, माया से नहीं खानी हार। दुनिया के इस रंगमंच पर हम सब हैं कलाकार। मैं निमित हूँ, निर्माण हूँ, सर्व गुणों की खान हूँ। इस दुनिया से अनजान हूँ, इसलिए बाबा की शान हूँ। कर्म बने जब योग युक्त, तो जीवन नैया हो जाए पार। दुनिया के इस रंगमंच पर हम सब हैं कलाकार। मंच नहीं ये खेल है, जहाँ होता आत्मा और परमात्मा का मेल है। न्यारी भी बनूं, प्यारी भी बनूं, शिव पिता की दिल की दुलारी भी बनूं। यही तमन्ना रहती दिल में, करती रहूं बाबा से प्यार। दुनिया के इस रंग मंच पर हम सब हैं कलाकार। ओम शांति।
सिंपल शब्द है और बहुत बहुत प्रभावशाली सिंपल रचना। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर आनंद एक मिनट के लिए। मैडम किधर है? हाँ इधर। तो परिस्थितियाँ अचानक आती है, अचानक एक बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस, और अचानक एक तूफान, और बाबा ने कैसे मदद की और कैसे पार करा दिया। तो तूफान सबके जीवन में आते हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। तो हम अनुरोध करेंगे कि अपना एक शॉर्ट में अनुभव सुनाए। पहले आनंद भाई।
ओम शांति। करीब ऑलमोस्ट एक साल हो गया, लास्ट सितंबर में करीब ऑलमोस्ट 20 तारीख के आसपास मेरी युगल है, तो उसको छाती में एक साइड में दर्द हो रहा था और दो तीन महीने से था। फिर कुछ पेट में दर्द, डायरिया काफ़ी हो रहा था, सब इन्वेस्टिगेट किया, कुछ मिला नहीं। फिर अचानक एक दिन उसको उल्टी हुई, खून की उल्टी, तो सोचा कुछ इंजरी हुई थी उसकी वजह से शायद हुआ है। पर उसका डायग्नोसिस हुआ कि उसको लंग का कैंसर है। जनरली कोई कैंसर सुनते ही एक मन में हलचल, बेचैनी, एक दुख का असर, भय कि अभी मैं कितने दिन रहूंगी या कितने दिन रहूंगा नहीं रहूंगा, रहूंगी या नहीं रहूंगी। बट एज ए डॉक्टर तो है ही, आपको पता रहता है कि ये बीमारी क्या है, किस हद तक ये बढ़ सकती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और हम लोग रूटीनली पेशेंट्स इसे देखते रहते हैं। पर बाबा के ज्ञान, दादियों के अनुभव और सबके क्लासेस, और इस ज्ञान में चलते हुए एक सेकंड भी मन में हलचल नहीं आई कि अब क्या करें। सिर्फ एक ही था कि बीमारी आई है तो इसका हमको सिर्फ सामना करना है, वो भी बहुत सहजता से। और जैसे भी सब बड़े दीदियों के और के क्लासेस सुनते रहते हैं कि कोई भी चीज़ की चर्चा ना हो, तो हम लोगों ने बस बिल्कुल जो नज़दीक के आसपास के एक दो तीन लोग हैं, मेरे घर वाले से उनको ही बताया और बाकी किसी को नहीं बताया, कि जैसे आप किसी को बताने जाएंगे तो सब लोग उसकी चर्चा करेंगे, राय देंगे और वातावरण नेगेटिविटी का हो जाता है। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसकी अगर कम से कम चर्चा हो तो अपने को एक मार्ग मिलता है पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने के लिए। तो उसी हिसाब से हम लोग चले और रास्ते मिलते गए और ट्रीटमेंट हो गया और ऑलमोस्ट अभी 99% क्लियर है। और एक दिन भी ना तो ये हलचल में आई ना मैं हलचल में आया, और डेली रूटीन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और हम लोग आते रहे, पहला खीमो होते ही पहले बाबा के पास ही आए, और हर बार आते, पिछले एक साल में छठवीं टूर है हमारी और इसका ट्रीटमेंट चालू है। ओम शांति।
ओम शांति। जब डायग्नोसिस हुआ तो कुछ लगा नहीं कि वे, और बस एक ही थॉट था कि ये शरीर के डॉक्टर को है ना, उनको पूछा कि कौन सी स्टेज है, क्या चल रहा है, और ना ही रिपोर्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व रही, और ना ही बाबा को पूछा कि क्यों, क्या, कैसे। बस आया है, फेस करना है। फेस करना इसे भी नहीं लगा एक्चुअली जब डॉक्टर फील्ड में थे तब जब कुछ भी बीमारी थी, यानी जब सिखाते थे तो ऐसे लगता था कहीं मुझे तो नहीं है ना, ऐसे देख भी रहे, पर अभी मालूम ही नहीं पड़ा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, और मुझे समझ में ही नहीं आया। और उसका जब मैंने सोचा कि क्या हो सकता है इसका रीज़न, तब बाबा तो है ही, पर एक बार भाई जी ने ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी का टॉपिक दिया था, और ब्रह्मचारी तब इतना मालूम नहीं था, इतना था सिर्फ कि ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करना, पर वो एक्चुअली क्या है वो सोचते सोचते बाबा की जीवन कहानी और दीदी दादियों की जीवन कहानी पढ़ी। उस टाइम वो जो पढ़ा हुआ था कि दादियों ने दीदियों ने भी क्या संघर्ष किया अपनी लाइफ में, शायद उसकी वजह से ही मैं शायद उसकी वजह से ही बिल्डअप हुई हूँ। और बस एक दो लाइनें ही कहना चाहती हूँ, अभी कल ही मैंने लिखा था, मालूम नहीं सही है क्योंकि शब्द की रचना तो कम है, फिर भी दूर से मौत को हंसता हुआ देखा, जिंदगी मुस्कुराने लगी, मौत परेशान, जिंदगी अपनी शान में, मौत ने देखा, मौत को दिखाई दी अपनी सीमा, सीमित है शरीर तक, मौत परेशान, जिंदगी अपनी शान में, जिंदगी शरीर प्रति था सम्मान पर न था देह अभिमान या मोह, मौत ने देखा न दिखाई देने वाला जिंदगी का साथी, न दिखाई देने वाला जिंदगी का साथी, मेरा बाप दादा, सबका बाप दादा, प्यारा बाप दादा, सर्वशक्तिवान बाप दादा, ओम शांति।
कई सालों से हम देख रहे हैं दोनों ही बाबा के घर में आते रहते हैं, और जब भी आते हैं तो कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल शांत, पूरा अपना योग युक्त। और मैडम का तो बहुत ही ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, वो हलचल में आ सकते हैं, इनको कभी हलचल में हमने नहीं देखा, इतना उनकी अचल अडोल स्थिति रहती है, निरंतर बाबा से जैसे कनेक्टेड रहते हैं, नोट्स लिखते रहेंगे, चुपचाप आके क्लास में बैठते हैं, ना कभी कहीं नहीं, चुपचाप आएंगे चुपचाप जाएंगे। और कल ही की एक घटना है, हमारे ओपीडी में एक कन्या आई, छोटी कन्या, तो उसको हमको लगा उसको पहले आँख के डॉक्टर ने देखा, फिर उन्होंने हमारे पास भेजा, तो लगा कि कुछ है, फिर डॉक्टर आनंद के पास भेजा हमने उनको, तो वो जो कन्या है उसके रिपोर्ट्स इतने खराब आए कि अभी उसको शायद डायलिसिस लगेगा। और उसके जो पिताजी है, उसकी जो बहन थी मतलब बुआ, वो हमारे पास कई समय डायलिसिस पेशेंट थी, तो जैसे ही कल, वो यंग पिता है, 25-30 वर्ष होगी उनकी उम्र, जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट्स देखे और हमने बताया कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आए, वो एकदम स्तब्ध रह गए। एक तो बहन को मरते हुए देखा, 5 साल तक डायलिसिस, और फिर गई। अभी उनकी छोटी सी बेटी जिसको केवल कमजोरी है, केवल सिर दर्द हो रहा था और कुछ नहीं, पर रिपोर्ट्स में कुछ के कुछ। आज सोनोग्राफी होगी तो उससे फाइनल फिर पता चलेगा क्या करना है, अगर किडनी छोटी है दोनों भी तो परमानेंट फिर वो भी डायलिसिस। तो डॉक्टर आनंद भाई उनको देख रहे हैं, आज भी देखेंगे वो। तो जीवन अनित्यता अनिश्चितता से भरा हुआ है, अचानक कुछ भी आ जाए हमें तैयार रहना। जैसे कौन सोच सकता था कि डॉक्टर है, चलते फिरते हैं, और अचानक कैंसर। उस समय सारे रिपोर्ट्स आनंद भाई ने हमको भेजे थे, हम लोग सोच रहे थे क्या हो सकता है क्या हो सकता है, और जब रिपोर्ट आया तो इतना शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया। परंतु सब कुछ बाबा ने धीरे धीरे, कीमो भी हो गया, सब कुछ हो गया, आपके सामने बैठे और कैंसर पेशेंट है, वो भी लंग कैंसर, उसमें पेशेंट बचता भी नहीं है कई बार। तो ये सारा बाबा के प्रेम का चमत्कार है। पांडव भवन में भी सेवा में आते हैं।
मैं बस और एक बात कहना चाहता हूं कि बीमारी बड़ी नहीं होती, हम बड़े होते हैं। तो बीमारी कोई भी हो उसको अपने शरीर पे हावी नहीं होने देना, हमें उस पे हावी होना है। तो मैं सभी पेशेंट्स को वही बताता हूं कि बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी हो, अगर मन बड़ा, मन शक्तिशाली है तो उस बीमारी को, शरीर है क्या, शरीर सब दवाइयों का, दवाइयाँ तो पड़ी है शरीर के अंदर, केमिकल्स ही है, सिर्फ उसको इमर्ज करना है। जैसे हम टेंशन ले लेते हैं कोई भी बीमारी का, तो शरीर अपने पर हावी हो जाते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लोग घबराते हैं, टेंशन में आते हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता और भटक जाते हैं, और केयर करना है, निष्कालजीपन नहीं करना है, उसकी पूरी केयर करनी है। तो लोग केयर करना छोड़ देते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। बीमारी कोई भी हो सिंपल है, बस उसको समझना है, डॉक्टर से मिलना है, राय लेनी है, एक नहीं 4 डॉक्टर से मिलो आप, लेकिन घबराओ नहीं, यही बात कहनी थी मेरे को। ओम शांति।
जहाँ चल